स्वितेज ओम नमः स्वितेज ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूवृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धे। आचार्य उमास्वामी रचित ये तत्वार सूत्र ग्रंथ है और उसके दूसरे अध्याय का हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। पहले ही सूत्र के स्पष्टीकरण में टीका में हमने पांच भावों संबंधी बहुत विस्तार से चर्चा की है। अब यहाँ हम हिंदी पृष्ठ 186 पर आ गए, 186। वहां लिखा है पांच भावों के संबंध में विशेष स्पष्टीकरण, वहां से हम आगे लेते हैं। कल हमने औपशमिक आदि भाव, जीव का कर्तव्य वगैरह बातें देखी थी। देखो उसमें फिर 185 पेज पर अंतिम दो तीन लाइन देख के फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नीचे से छठी लाइन, जब जीव पुरुष मिला ना, 185 पेज, जब जीव पुरुषार्थ के द्वारा तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास करता है। अभ्यास यानी वारंवार उसमें उपयोग लगाना, उसको अभ्यास यानी हम प्रैक्टिस करें कहेंगे। किसमें लगाना है? तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाना। आप हिंदी की बात करें, हिंदी 185। हाँ, उसके पहले वाली चार लाइन, छह लाइन, उसके पहले की छह लाइन। तो हमें पुरुषार्थ का अर्थ ऐसा लगता है कैसे बैठना, कैसे स्थिर होना, कैसे उपयोग अंदर ले जाना। पुरुषार्थ किसका करना है? तो तत्व निर्णय का ही पुरुषार्थ होता है। उपयोग तत्व निर्णय में लग जाता है तो उस तत्व निर्णय के काल में, तत्व विचार के काल में सम्यक्त्व स्वयमेव होता है। कर्म की अवस्थाएं भी स्वयमेव वहां प्रकट होती है। तो इस जीव का पुरुषार्थ इतना ही कि तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास करना। तो जब वो तत्व निर्णय में अपना उपयोग लगाता है, बारंबार करता है, उसको कहा अभ्यास करता है, तब उसकी विशुद्धता बढ़ती है। कर्मों का रस स्वयं हीन होता है। रस यानी अनुभाग। कौन से कर्मों का? अशुभ कर्मों का, मिथ्यात्व का भी, चारित्र मोहन्य का भी, ज्ञानावरणादि का भी रस जो है, पाप कर्मों का फल जो है, उसका जो रस है ना, उसके अनुभाग है, उसकी तीव्रता है, उसकी इंटेंसिटी है, वो अपने आप कम होती है। पुण्य कर्मों में तो उल्टा रस बढ़ने लगता है। तो यह कर्मों का रस हीन होता है। और कुछ समय में जब अपने पुरुषार्थ द्वारा, यह मुख्यतः तो मिथ्यात्व की बात है, मिथ्यात्व ही नहीं होता चला जाता है। तत्व विचार से ही ये बातें होती है। पहले मिथ्यात्व जब बंधा था तो तीव्र था। जब यहां तत्वों का विचार चलता है तो अंदर सत्ता में पड़े पड़े मिथ्यात्व मंदता की ओर बढ़ता चला जाता है। तो कुछ समय में जब अपने पुरुषार्थ द्वारा, पुरुषार्थ कौन सा है? तत्व निर्णय का। अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रथम औपशमिक भाव से प्रतीति प्रकट करता है। प्रतीति यानी श्रद्धा, यानी सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब दर्शन मोह का स्वयं उपशम हो जाता है। यहां औपशमिक भाव जहां लिखा है वहां तो जीव का सम्यक्त्व परिणाम लेना, और दर्शन मोह का स्वयं उपशम होता है वहां कर्मों की बात है। मिथ्यात्व जो कर्म है, वो जो हमने देखा था ना, लगातार उसके उदय रूप अवस्था थी, अब उसमें अंतर पड़ता है और उसका उपशम हो जाता है। जीव का कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास है, जीव को इतना ही करना है, क्या बारंबार तत्व निर्णय में अपने उपयोग को लगाना है। किसी का जल्दी होगा, किसी का कुछ काल के बाद होगा, परंतु इसका कर्तव्य तो इतने मात्र है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ अन्य पुरुषार्थ करेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, यही एकमात्र पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय करना। जब जीव तत्व निर्णय में उपयोग लगाता है तब दर्शन मोह का उपशम स्वयमेव हो जाता है, क्योंकि कर्म में हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। परंतु ये नक्की गारंटी है, जिस समय यहां तत्व निर्णय में उपयोग लगता है वहां सामने वो उपशमादि स्वयं हो जाते हैं।
वर्ड तत्व निर्णय इसके बारे में जरा आप,
हाँ देखिए,
क्योंकि कभी ऐसा निर्णय के बारे में तो कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ जाना कि वहां जाना वगैरह निर्णय करना पड़ता है, वर्सेस ये निर्णय थोड़ा,
हाँ आपका ऐसा कहना है ये तत्व निर्णय ने क्या, क्योंकि हमें तो कुछ उसमें कुछ अलग अलग भाषित होता है। तत्व निर्णय करने का अर्थ क्या होता है, तो हमने देखा था द्रव्यानियोग में जो सिद्धांत बताए गए हैं, कौन कौन से छह द्रव्य है, सात तत्व कहो या नौ तत्व कहो, नौ पदार्थ भी कहते हैं, नौ तत्व भी कहते हैं, स्व क्या है, पर क्या है। कल हमने जो सात तत्व संबंधी भूल भी देखी थी उसका पहले हम विचार करते हैं, क्या हमारे में ऐसी मान्यता में कहीं भूल है कि नहीं, इस पर विचार करते हैं। फिर उन तत्वों का सही स्वरूप क्या है, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा स्वरूप बताया है वैसा स्वरूप के बारे में हम स्वयं विचार करते हैं, और ये तत्व ऐसे ही है कि नहीं है, हम प्रोस एंड कॉन्स सभी एंगल से उसको विचार करेंगे, उसका हेतु, उसका जो कुछ कारण बताए, कुछ प्रूफ बताए, तो उसकी बात हम, हमें वो सही लगता है कि नहीं है। देव गुरु यानी मुनि का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप जैसा है वैसा हमारी श्रद्धा में है, क्या हमें कुछ अन्य भाषित होता है, स्व कौन है, पर कौन है, और फिर हमें जो मैं इस शरीर की क्रिया करता हूं, ये शरीर में जैसी आत्मबुद्धि होती है हमें बताना नहीं पड़ता कि ये शरीर तू है, किसी ने हमारा नाम लेकर पुकारा तो हम झट से उठ जाते हैं ना, हाँ कह देते हैं, तो ये मैं हूं, ये बुद्धि एकमेकपना इसमें से जैसा है वैसा एकमेकपना मात्र आत्मा में हो जावे, तब तक ये तत्व निर्णय ने मैं कौन हूं, पर कौन है, मैं शरीर रूप नहीं हूं, राग रूप मैं नहीं हूं, तो ये जो परम पारिणामिक भाव की हमने स्वरूप देखा था उस रूप मैं हूं। अब तत्व निर्णय का अभ्यास करने बारंबार उस संबंधी विचार चलेंगे, और मैं ज्ञायक हूं और ये सारी बातें मेरे ज्ञेय है, वो मेरे से भिन्न है, राग इतना ही मेरा स्वरूप नहीं है, इसका अभ्यास है, इसकी प्रैक्टिस, इसके विचार बारंबार हम उसका चिंतन करते हैं, तो हमें तत्व ज्ञान की एक विशिष्ट दृष्टि प्राप्त होती है। तो ये हाँ,
बिगिनिंग में तो इस तरह का बात करते हैं अपने को, दैट्स हाउ पीपल विल फील इट, नहीं कि मैं आत्मा हूँ और मैं राग रूप नहीं हूँ, पहले तो शब्द रूप ही रहेंगे,
बिल्कुल हाँ,
फिर बाद में जैसे विचार कर देंगे।
हाँ देखो, आपका कहना है पहले तो शब्दों में हो गए, बाद में वो डिफ्रेंशिएट होगा, बात सही है। पहले में, पहले तो फर्स्ट टाइम हम सुनते हैं तो लगता है नहीं ये कुछ बात अलग है, हम अभी तक जो कुछ समझ रहे थे, मैं मनुष्य मानकर हम ये सारी क्रिया कर रहे थे, उपवास करना, यात्रा करना, जो कुछ दान देना आदि बातें जो है, मैं मनुष्य मानकर ये सारी करते थे। अब ये ख्याल में आए कि मनुष्य ये तो विशिष्ट संयोग है शरीर का और कर्मों की विशिष्ट अवस्था हो रही है, परंतु मेरा स्वरूप इससे कुछ भिन्न है, तो मैं कौन हूं इस संबंधी हम सीरियसली थोड़ा सोचते हैं, और जो सुना है उस पर हम विचार करने लगते हैं। विचार करेंगे तो और फिर पुद्गल का क्या लक्षण है, तो ये मुझे तो ये शरीर दिख रहा है तो ये क्या हो सकता है, लक्षणों के द्वारा हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। हमें अपना भी जो निर्णय करना है कि जीव तो जानने देखने वाला है, तो यहां जो जानन देखन का कार्य हो रहा है वो मेरा है, और यहां जो शरीर जो दिखाई देता है या अन्य जो कोई कर्मों की फलस्वरूप बातें बनती है वो मेरे से भिन्न है। इस तरह से स्व और पर का भेद ज्ञान जिसको कहते हैं, भेद करके उसको जानना, कि पर को भी कैसे जानना है कि यह मैं नहीं हूं, इस तरह से उसको जानना है। हमें तो पर को जानने में जो रुचि थी अभी तक, अभी पर को जानेगा, जानेगा नहीं वो बात नहीं है। यदि पर को नहीं जानेगा तो स्व और पर ये दो शब्द ही नहीं होंगे ना। पर को पर रूप से जानना है और स्व को स्वरूप से जानना है, वो स्व पारिणामिक भाव में स्थापित करना है। अब बारंबार उस पर विचार चलते हैं तो जैसे हमें मैं शरीर रूप है भासित होता था अभी तक, अब कैसे भासित होने लगता है, अरे मैं तो जानने वाला हूं, यानी इस शरीर से पूर्णतः भिन्न अपना स्वरूप भासित होने लगता है। और ये तो अभ्यास हर समय चलेगा, मात्र ध्यान अवस्था में नहीं। हमने देखा ना, होते हुए को अपने से भिन्न जानने की कोशिश करना है। आपका कुछ प्रश्न है?
शरीर को जानना जरूरी है क्या?
हाँ, आपका कहना है
करने के लिए।
हाँ, आपका कहना है शरीर को जानना जरूरी है कि नहीं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो शरीर को कैसा जानना जरूरी है, ये पर है जानना जरूरी है। और पर को पर जानकर उसी को जानते रहना कि नहीं जानते रहना, जब हमने निश्चित किया ये पर है तभी उसको जानने की क्यों, हम इतने ही लिए जानना था कि ये पर है। जैसे देखो हम अमेरिका में आते हैं तो सभी घर सरीखे दिखते हैं ना, तो हमें किसी के घर जाना है या अपने स्वयं के घर जाना है तो हम कुछ विशिष्ट साइन से उसको इलेक्शन है, उसका नंबर है, जो कुछ है हमने बराबर उसको समझा है तो हमें अपने घर में प्रवेश करना है। और दूसरे को जानना कि नहीं दूसरे घरों को, ये मेरा नहीं है ऐसा जानना। यदि उसको भी मैं मेरा ही जानेंगे और अंदर घुसेंगे तो फिर पुलिस आएगी, इनको ये मेरा नहीं है इसमें मेरा प्रवेश हो नहीं सकता है ऐसा जानकर अपने घर को पहचान कर उसमें प्रवेश करना है। हम क्या पर को जानने में सभी घरों को हम देखते रहे तो क्या होगा, अरे कुछ दाल में काला है, हम किसी के तरह हम स्टेयर कर रहे हैं दूसरे के घर के सामने जाकर, एक लगातार 10-15 मिनट आप देखते रहो, पुलिस आएगी। हाँ, क्योंकि वो कंप्लेन करेगी कि ये कुछ ज्यादा जरा ऑब्जर्व कर रहा है मेरा घर। ऐसे ही हम शरीर को ही देखते रहे, ख्याल है ना कहाँ मिस्टेक हो रही है, ये शरीर पर ही उपयोग लगाए बैठे हैं तो क्यों लगाता है, ये वो पर है मैं नहीं हूं जानने पर उसमें क्यों इतना रस है हमें, ख्याल में आता। इसलिए पर को जानना क्यों जरूरी है, ये मैं नहीं हूं इसलिए उसको जानना जरूरी है। कैसा जानना है, मैं नहीं हूं ऐसा जानना है, वो पर है ऐसा जानना है। और हम कैसे जान रहे उसको, ये मैं हूं ये मेरे है ये मुझे कुछ कार्यकारी है ये अनिष्ट है ये इष्ट है, हम पर को तो नहीं जान रहे वो बात नहीं है, परंतु यह मैं हूं ऐसे जान रहे। अकेले मैं को मैं जानना था, उसके बदले मैं प्लस कोई अन्य शरीर के परमाणु मिलकर मैं हो गया हूं, मैं मनुष्य हूं, और फिर जो अन्य चीजें है उसमें ये अच्छा ये बुरा, इस तरह से हमारी ये जानने में मानने में सब गलती हो रही है। और जब कहते ज्ञाता दुष्टा हो जाओ तो कैसा ज्ञाता दुष्टा हो जाता है कि इसको पर को ही जानने की रुचि पड़ी है। हम जानन देखन वाले क्या, सुबह से रात तक टीवी के सामने बैठते हैं, हम जानते देखते रहते हैं, ऐसा जानना देखना हमका ज्ञाता दृष्टा नहीं होना है। ख्याल में आता है ना कि पर को जानना, देखो अगर पर को हम है ही नहीं ऐसे मानेंगे तो ज्ञान भी झूठा हो जाएगा। कैसा जानना है कि शरीर है अभी विद्यमान, अभी देह में इसी क्षेत्र में मैं रहता हूं, इसी क्षेत्र में शरीर भी है, शरीर का संयोग है, पहले इसको तो मान्य करना है ना, कर्मों का संयोग है। यदि है ही नहीं तो उसको दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जब हम कथन करते हैं
तो जानना जरूरी है। हाँ, जब जो शरीर में बैठा है, अब चलो पर का शरीर नहीं देख रहे हैं लेकिन यहाँ क्या क्या स्पंदन हो रहे हैं, वो जरूरी है कि नहीं?
आपका कहना है अपने में अपना जो स्पंदन हो रहा है उसको जानना जरूरी है कि नहीं है? कौन से स्पंदन की बात कर रहे हैं, शरीर के कि आत्मा के?
शरीर में पहले तो ध्यान तो शरीर का ही जाएगा।
आप कहते पहले ध्यान तो शरीर का ही जाएगा, नहीं, शरीर का हमें ज्ञान करना है, ध्यान नहीं करना। ज्ञान और ध्यान में डिफरेंस है, ज्ञान तो जानना है और ध्यान यानी जानते रहना है। जब हम रोड पर से जाते हैं तो रास्ते में कोई आते हैं तो उसको जानना कि नहीं जानना, जानना। अब कोई है रास्ते पर आए, मान लेते कोई जानवर है या कोई महिला है, तो वो ड्राइविंग छोड़कर उसी को जानते रहना कि नहीं जानते रहना है? नहीं तो वहां एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो जानना क्यों? क्योंकि अरे अपने बीच में तो नहीं आता है, उसको जानना जरूरी है, उसको अवॉइड करना जो कुछ जरूरी है, परंतु वो जानने मात्र के लिए है, जानते रहने के लिए नहीं है। और हम क्या कहते हैं, शरीर के ऊपर केंद्रित के, उसी का ध्यान करने लगते, उसके वो ध्यान का ध्येय नहीं है। हमारे ध्यान का ध्येय परम पारिणामिक भाव है, तो उसके पहले अन्य भावों को जानना कि नहीं जानना। हाँ, ये सारे ज्ञान के तो ध्येय है, औदयिकादि भाव है, राग द्वेष के परिणाम है, इसके अलावा जो संयोग में शरीर आदि है या परद्रव्य है, उनको जानना कैसे? यह मैं नहीं हूं इस रूप जानना है, अभी वर्तमान में इनका संयोग है उसको भी जानना है, फिर भी ये संयोग का लक्ष्य छोड़ना है। देखो, व्यवहार नय और निश्चय नय, ऐसी दो बातें होती है। तो व्यवहार नय क्या क्या करता है? तो द्रव द्रव्यों को एक करके कथन करता है। जैसे जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म का उपशम किया, कर्म ने जीव को फल दिया, दो द्रव्यों ने आपस का एक दूसरे को किया, ये जो कथन होता है निमित्त का, उसको कहते हैं व्यवहार कथन। संयोग की अपेक्षा से बताने आता है, जैसे घी का घड़ा, शिल्पा जी आपने देखा ना, गांव में होता है ना, हाँ, घड़े में घी, अभी घी की बरनी कहो आप, घी का डब्बा कहो या शक्कर की बरनी कहो। हाँ, शक्कर की बरनी है आपके घर में तृप्ति जी, है या कांच की है? हाँ, कांच की है, अच्छा। हाँ, तो फिर भी वो बरनी को शक्कर के संयोग से हम शक्कर की बरनी कहते हैं। ये क्या हुआ? व्यवहार कथन हुआ। जैसे व्यवहार कथन में दो भिन्न द्रव्यों को संयोग की अपेक्षा से कहने में आता एक करके कथन होता है, वैसे ही व्यवहार नय का और दूसरा कार्य है एक ही द्रव्य में भेद करके समझाना। द्रव्य कैसा है हमको मालूम नहीं है, आत्मा आत्मा है। अरे आत्मा क्या होता है? आत्मा आत्मा होता है ना, आत्मा में चले जाओ, कहाँ चले जाना, क्या करना, आत्मा है कैसा? तो कहते हैं द्रव्य क्या होता है, तो गुण पर्यायों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं। तो गुणों का समुदाय है ही है, परंतु उसके अनादि अनंत पर्याय भी उसी द्रव्य का अंग है, उसी के अंतर्भूत है, क्योंकि वो द्रव्य की अवस्था है। हमने देखा द्रव्य को, कोई जो द्रव्य है उसका नाम तो होता है ना, उसको तो हम उस नाम से उस द्रव्य को कहते हैं। तो द्रव्य है तो उसका कुछ वॉल्यूम है कि नहीं, उसका कोई क्षेत्र विस्तार है ना, उस द्रव्य का अपना विस्तार, उसको हम क्षेत्र कहते हैं। उस द्रव्य की सभी अवस्थाएं, उसको हम काल कहते हैं। तो कहां से कहां तक होती है, हर समय वो विद्यमान है ना, द्रव्य किसी न किसी अवस्था रूप से विद्यमान है। जब हम सोना कहते हैं तो सोने के मूल फॉर्म से जब जब किसी फॉर्म में, पहले भले खदान में था, पाषाण के साथ मिला हुआ था, बाद में उसको प्यूरिफाई किया, उसका बिस्किट बनाया, फिर उसको घर में लाए, उसका हार बनाया, उसकी बंगड़ी बनाई, वो अनादि से अनंत काल तक की जो सभी पर्याय है उस सबको मिलकर हम सोना कहेंगे। तो ये जो सभी पर्यायों का समूह उसको द्रव्य कहते, टाइम फैक्टर। अभी आज फोर्थ डायमेंशन आजकल कहते ना, टाइम इज अ फोर्थ डायमेंशन, ऐसे यहां ही कोई द्रव्य है तो उसके अपना द्रव्य है, वो जीव है या पुद्गल है, उसका अपने जो जाति नाम है, उसका अपना क्षेत्र है, उसका अपना काल यानी पर्यायों का समूह है, और उसका अपना भाव यानी अनंत गुणों का समूह है। तो प्रत्येक द्रव्य में ये होता ही है, उसको ही हम अखंड द्रव्य कहते हैं। और भगवान ने द्रव्य को इसी तरह से समझा है। तो ये द्रव्य को हमने बहुत विस्तार से भेद करके समझाया, उसमें अनंत गुण है, जीव में असंख्यात प्रदेश है, और फिर उसके एक एक पर्याय तीन काल के ऐसे मिलकर ये अनंत पर्याय होती है। ये हमने गुण और पर्यायों को विस्तार से समझने के लिए भेद किए। अब समझ में आया ना, अब उस भेद को गौण करना है। और मैं अखंड एक हूं ऐसा अभेद, अभेद को ही निर्विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प अनुभव करना यानी अभेद का अनुभव करना, जिसको समयसार में शुद्ध नय कहा है। तो इस तरह से हमें जो जानना है ना, क्योंकि हमें तो पर के संयोग से पहले उसको समझा है कि ये शरीर है, ये जीव है, इकट्ठे रहते हैं, एक क्षेत्राव का संबंध है, परंतु इससे मैं भिन्न हूं। फिर जीव में जो गुण पर्यायों के भेद किए, पर्याय में जो विकार किया, उसका भी विकार है उसका भी ज्ञान हुआ, परंतु उस रूप में नहीं हूं। फिर ये गुणों को, पर्यायों को, भेदों को, हो भेदों को गौण किया है। गुण और पर्याय कहीं द्रव्य में से निकल नहीं जाएंगे, परंतु हमने अखंड अभेद एक का अनुभव करना है, इसलिए उसका उसको गौण करके, कल हमने पढ़ा था इसको, उसको गौण करके किसको, गुण पर्यायों को भी गौण करेंगे, संयोग वाले पर पदार्थों को भी गौण करेंगे, अन्य सभी पर पदार्थों को गौण करेंगे, और ध्यान यानी ध्येय किसको बनाएंगे हम, किसका ध्यान करेंगे, हाँ अभी जो परम पारिणामिक भाव है, त्रिकाली एक रूप शुद्ध भाव, उसका ध्यान करेंगे। तो ध्यान ध्यान के बारे में बहुत गड़बड़ी चलती है ना, ध्यान को सब सीखते पर ध्येय क्या है वही भूल जाते हैं, ध्येय में बहुत गड़बड़ी चल रही है।
तो यहाँ तो फिर ये होता है ना कि जो जानन जानन क्रिया हो रही है, जो चेतना अपनी हो रही है, जो अपना एग्जिस्टेंस है, जो ज्ञान का है, वेन यू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स एंड व्हाट इज रिमेनिंग इज दैट चेतना, तो देन यू नो योर फोकस देन गोज ऑन दैट ओनली।
ऐसा है ना, पहले तो हम ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ भी क्या नहीं, क्या मैं शून्य रूप हूँ,
हाँ,
शरीर में नहीं, राग में नहीं, पर पदार्थमय नहीं, भेद में नहीं, अरे कुछ होगी भी को नहीं, तो उसका जो पॉजिटिव जो होता है, मैं अनंत गुणों का अभेद एक रूप पिंड जो है, ज्ञायक भाव में हूँ। अभी ज्ञान एक गुण की अपेक्षा से उसको मुख्य किया, परंतु वो अकेला ज्ञान नहीं है, हाँ ज्ञायक भाव में पूरे अनंत गुणों का एक रूप अभेद आता है, भेदों को गौण किया है हमें,
भेदों को गौण किया, बट तब वो पहले जब भी विकल्प में तुम्हारा मीन्स यू सब गुण क्या क्या है वो जाना, बट फिर आख में आखिरी तो जो मतलब जो गुण प्रकट है
जो मैं, हाँ, मैं यानी अखंड ऐसा, पहले तो क्या क्या गुण है उसकी हमने चर्चा की, तो एक गुण के द्वारा भी हमें अखंड को पकड़ना है, एक गुण को या उसके भेद को नहीं पकड़ना है, हल में आता। तो इस तरह से हमने ये तत्व निर्णय की बात जो है बारंबार अभ्यास करने की बात आती है ना। हाँ, आपका कोई प्रश्न है भाई?
जो पारिणामिक भाव है,
हाँ
पारिणामिक परिणमन से ना है, परिणमन संबंधित भाव,
हाँ
तो ये परिणमन का अर्थ परिवर्तन या उसमें अपने आप में ज्ञानन दर्शन देखन रूप जो है वो परिणमन,
आपका ऐसा कहना है, पारिणामिक शब्द परिणमन से आया हुआ है, तो उसमें कुछ परिणमन होता है तभी आपने पारिणामिक कहा कि नहीं कहा, तो उसमें कैसा परिणाम विसदृश ने सदृश कैसा है रूप सदा में है, ऐसा जो है वो कायम रहने वाला जो है उसको पारिणामिक कहा, और वो स्वभाव भाव है, त्रिकाली है, उसको कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, वो जीव का कायम रहने वाला एक सदृश भाव है, और जो औदयिक भाव है, अन्य भी भाव है, वो क्षणिक है, एक एक समय की अवस्थाएं हैं। पारिणामिक भाव तो सदैव है, वो पारिणामिक भाव तो स्वभाव भाव है, और उसके साथ पर्याय भी है, पर्याय भी उसके साथ साथ है ना, पारिणामिक भाव और पर्याय मिलके पूरा द्रव्य है, जिसको हम प्रमाण का विषय कहते हैं। एक साथ ही रहती है,
तो वो परिणमन के अंतर्गत है ये।
हाँ देखो, हाँ देखो, हमने क्या कहा, उत्पाद से व्यय रूपे ने, अभी जब हम उत्पाद कहते हैं तो उत्पाद है विशिष्ट, मान लेते दसवीं पर्याय का उत्पाद है, और उसी समय में नौवीं का व्यय है, ऐसा नहीं होता कि दसवीं के उत्पाद हुआ फिर ग्यारहवें समय में दसवीं का व्यय हुआ और फिर बारहवें समय में दूसरी कोई और पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। जिस समय एक पर्याय का उत्पाद होता है वही पूर्व पर्याय का व्यय है, अभी प्रकाश हुआ वही अंधकार का व्यय है, हमने स्विच ऑन करते ही प्रकाश हुआ तो पहले अंधकार निकल गया ना, फिर प्रकाश आया कि नहीं आया, जैसे हमारे वहां हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, हम हमारे यहाँ एक सातारे के पास एक बड़ा पहाड़ है, उसमें एक नानगिरी कुछ कहते हैं, तो बहुत सालों की सैकड़ों सालों की वो गुफा अंदर में अंधकार है, तो हम जाते हैं अंदर तो क्या करना पड़े, पहले सब पूरा अंधकार निकालो और बाद में प्रकाश करो कि नहीं, क्या मेथड है, हमने सोचा इतना हजारों सालों का अंधकार है, पहले उसको निकालने के लिए 2-4 साल लगेंगे और बाद में हम वहां प्रकाश ले जाएंगे, क्या ऐसा होता है? आप क्या कहते हैं? पहले अंधकार को हटाना पड़ेगा तभी प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो कितने दिन लगे? 1000 साल का अंधेरा निकालने के लिए कितने साल लगेंगे बोलो?
तो अंधकार का व्यय प्रकाश,
हाँ, प्रकाश करते ही, अंदर जाते ही आप टॉर्च ऑन कर दो या बस मैचिस जलाओ, क्या होगा? प्रकाश होगा, उसी समय अंधकार है ही नहीं है। प्रकाश का होना ही अंधकार का व्यय है। ऐसा नहीं कि पहले वो चला गया और फिर प्रकाश आया, ऐसे नए नए पर्याय की उत्पत्ति होती है। प्रकाश का उत्पाद और अंधकार का व्यय समय एक, केवल ज्ञान का उत्पाद और मति शुद्ध ज्ञान का अभाव व्यय समय एक।
हमको प्रणाम ने भ्रम ये था कि परिवर्तन या उसमें कुछ,
हाँ, हमें ऐसा लगता है परिणमन या परिवर्तन ने कुछ दूसरा जैसा कुछ बदलाव आ जाए तो हम परिवर्तन कहते हैं। अभी हाँ, ये जो ये कल से ऐसा ही ऐसा दिख रहा है तो इसमें कुछ परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये स्कंद जो है ना, तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है?
पर्याय
कौन सी बदली? हमने तो ऐसी की ऐसी देखी। हाँ बोलो बे, देखो ये वैसी की वैसी रहना भी पर्याय ही है ना। पर्याय बदल कर ये जो हरे रंग का लाल हो जाए तो ही परिवर्तन हुआ क्या? दूसरे समय में भी हरा रहा, तीसरे समय भी हरा रहा, चौथे समय भी हरा रहा, उसका आकार भी वैसा वैसा, वही का वही नहीं, वैसा का वैसा। जैसे केवल ज्ञान एक समय में हुआ, दूसरे समय में भी केवल ज्ञान, तीसरे समय में भी केवल ज्ञान, तो वैसी की वैसी पर्याय हर समय हो रही है, परंतु वही की वही नहीं है। जैसे हम सागर के किनारे खड़े हैं, समुद्र के किनारे, तो वहां लहरें आती है, एक आई नष्ट हो गई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, वही की वही आई क्या? क्या वैसी की वैसी आई? हाँ, वैसे ही द्रव्यों में हमें तो ये कोई स्ट्रक्चर, तो ये कुर्सी हमें कल से वैसी की वैसी दिख रही है, परंतु उसमें हर समय नया 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 पर्यायों का क्रम चल रहा है। हो सकता है कि 4 साल वैसी की वैसी दिखे हमें, परंतु उसमें वो निरंतर परिणमन हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक गुण में हर समय परिणमन चल रहा है। इसी को तो द्रव्य का वो परिणमन स्वभाव है, परिणमनशीलता भी स्वभाव है। हो क्या कहा फिर से? नित्यता द्रव्य का स्वभाव है कि अनित्यता द्रव्य का स्वभाव है? बोलो, पूछो, पीछे पीछे। हाँ, क्या नित्य रहना द्रव्य का स्वभाव है कि पलटना द्रव्य का स्वभाव है? बोलो। दोनों पक्का? आप क्या कहते भाई, शांति भाई? कायम रहना द्रव्य का स्वभाव है?
जीव द्रव्य का कायम रहना स्वभाव?
हाँ, जीव द्रव्य आत्मा का कायम
का तो चेंज होते रहता है पर्यायों में, लेकिन स्वभाव तो
आपका कहना है जीव द्रव्य का तो कायम रहना स्वभाव है और पुद्गलों का पलटना स्वभाव है, बरोबर?
पर्यायों में पलटना,
पर्यायों में पलटना, हाँ
तो वही रहता है, तो वैसा ही रहता है।
अच्छा, द्रव्य वैसा ही रहता है, पर्याय में पलटता है, और जीव द्रव्य में क्या होता है? जीव द्रव्य पर्याय में नहीं पलटता?
पर्याय में पलटता है, भाव करते हैं तो पलटता है,
और भाव नहीं करते तो सिद्ध भगवान क्या होते? पलटते कि नहीं पलटते? नहीं पलटते। हाँ, देखो देखो क्या है, परिणमन ये द्रव्य का स्वभाव है, परिणमन भी स्वभाव है, हर समय कायम टिकते हुए कायम पलटना ये द्रव्य का स्वभाव है। जैसे नित्यता द्रव्य का धर्म है, वैसे अनित्यता भी द्रव्य का धर्म है। हर समय द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय होती ही रहती है, वैसी की वैसी हो या अन्य रूप से हो, परंतु द्रव्य कभी पर्याय बिना नहीं है, निरंतर परिणमन होना द्रव्य का स्वभाव है। ये द्रव्यत्व गुण है ना, प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का गुण है, उसके कारण द्रव्य का परिणमन हर समय होता है। तो द्रव्य कायम रहते हुए कायम पलटता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, सत ये द्रव्य का लक्षण है, तो हर समय नए पर्याय का उत्पाद, पुराने पर्याय का व्यय और द्रव्य द्रव्य रूप से कायम रहना, ये प्रत्येक द्रव्य का, नॉट ओनली जीव और पुद्गल, प्रत्येक द्रव्य का ये स्वभाव है, तभी उसको सत यानी द्रव्य कहा है। तो परिणमते हुए कायम रहना, तो कायम रहने के लिए उसको किसकी आवश्यकता है? द्रव्य को कायम टिकने के लिए कौन से अन्य द्रव्य की आवश्यकता है? कुछ नहीं। तो द्रव्य को परिणमन के लिए किसकी आवश्यकता है?
पर्याय के लिए पर की आवश्यकता
है क्या? नहीं, वो तो नक्की करेंगे ना। देखो देखो क्या है, द्रव्य का स्वभाव क्या है? कायम रहते हुए पलटना, पलटना द्रव्य का स्वयं का स्वभाव है। तो पर कोई आके उसको पलटा देवे तो पलटता है कि द्रव्य का स्वभाव ही पलटने का है? हाँ हाँ, ये पर्याय की बात हुई नहीं है, आज शाम को हो जाएगी। देखो, उत्पाद स्वयं करे ऐसी द्रव्य में योग्यता है, द्रव्य में शक्ति है, द्रव्य में अपना स्वभाव है। कोई दूसरा आवे, निमित्त आवे तो पलटा देवे, ऐसी उसमें कोई शक्ति ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं से परिणमन करता है। जैसे कायम टिका हुआ वो अपने स्वयं के कारण है, वैसे हर समय परिणमन भी वो अपने स्वयं के कारण करता है। बिल्कुल दूसरे की सहाय के कोई मदद, असर, निमित्त कोई उसके कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि निमित्त नाम का द्रव्य भी अपने में परिणमन करता है कि नहीं करता? बिन तो उसको फुर्सत का है आपका कार्य करने के लिए। कोई द्रव्य निठल्ला है ही नहीं है, प्रत्येक द्रव्य स्वयं में परिणमन करता है। तो अपना भी कार्य करे और पर का भी थोड़ा मदद करे। माँ अपना भी कार्य करे और बच्चों का भी करे, ऐसे हमने मान रखा है ना। देखो ये इसको कहते तत्व का निर्णय भाई, क्योंकि हमने अभी माना नहीं है, ये अंदर से ऐसा अभी फीलिंग नहीं आता है, अभी ऐसा लगता है नहीं नहीं कुछ निमित्त आएगा तो हमका पलटा जाएगा। हाँ, ये तत्व निर्णय जब तक सही नहीं होता है ना, तब तक अभी हम अभी हाँ कंफ्यूजन चलता है, और अभी हम तत्व के बारे में निशंक नहीं हुए हैं। तो ये निशंक हुए बिना ये अपने आत्मा का अनुभव करना है ना।
मनुष्य पर्याय कह रहे हैं।
हाँ,
ये तो पुद्गल का ढेर है।
हाँ,
जिसके वो नहीं है।
जो मनुष्य पर्याय कहते हैं वहाँ जीव भी है, एक जीव है। जीव की भी मनुष्य नाम की अवस्था चल रही है, जीव का भी आकार जो है मनुष्य आकार हुआ है, वो आत्मा का अपना आकार है।
तो इसे हम कर्मों के संयोग से,
कर्म का उसमें निमित्त है, कर्म का निमित्त है। परंतु यहाँ कोई जीव के भाव हो रहे, मनुष्य जैसा बिहेवियर हो रहा है, वो मनुष्य का अपना भाव है। यहाँ क्रोध मान माया लोभ जो जीव के हो रहे हैं, वो जीव का अपना विकारी भाव है, सामने कर्म का निमित्त है। यहाँ जो मनुष्याकार रचना हुई है वो जीव का अपना आकार है, सामने वो संस्थान नाम कर्म आदि कोई उसका उदय निमित्त है। जैसे हम थाली में पानी डालते हैं, कैसे हुए? फ्लैट आकार हुआ, और वही बकेट में भर दिया बाल्टी में, तो ऐसा उसका आकार बदल गया। क्यों? थाली के कारण और बकेट के कारण ना, है ना। तो अभी पत्थर डालो उसमें, हमने थाली में पत्थर का ढेर कर दिया और वैसा ही ढेर बकेट में किया, उसका आकार क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमें निमित्त पर नजर जाती है। ये पानी में अपनी योग्यता से आकार बदलने की अपनी योग्यता है, पानी का आकार पानी के अपने स्वयं के कारण होता है, समझ में आता है? हाँ, परंतु वहां निमित्त परद्रव्य का कहने में आता है। जैसे हमने उष्णता पर घटाया था, पानी का स्वभाव ठंडा है परंतु अग्नि के संयोग में उष्ण होता है, हमारी दृष्टि निमित्त पर जाती है और निमित्त ने ही कार्य किया लगता है, परंतु पानी की योग्यता के बिना वो निमित्त क्या करता वहां पर? पानी स्वयं अपनी योग्यता से पर्याय में गर्म रूप हुआ है, परंतु उसका स्वभाव वहां मौजूद है उसी समय भी। इसकी चर्चा तो हमने बहुत बार की थी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 186 पृष्ठ पर पांच भावों के संबंध में विशेष स्पष्टीकरण, देखो, कुछ लोग आत्मा को सर्वथा, सर्वथा यानी सिर्फ, ओनली, जिसको एकांत कहते हैं। तो एकांत क्या मानते हैं? चैतन्य मात्र मानते हैं। आप कहेंगे उसमें क्या मिस्टेक है, आत्मा तो चैतन्य मात्र है ना। अर्थात सर्वथा शुद्ध मानते हैं, वर्तमान अवस्था में अशुद्धता होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते। वर्तमान पर्याय में क्रोध, मान, माया, लोभ यानी शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, मिथ्यात्व का परिणमन चल रहा है, परंतु आत्मा को कैसे मान रहे? सर्वथा शुद्ध, जो पारिणामिक भाव की अपेक्षा से कथन किया था, परंतु पारिणामिक भाव के साथ अज्ञानी को क्षयोपशमिक ज्ञान भी है, यानी मिथ्या ज्ञान चल रहा है, उसके औदयिक भाव चल रहे हैं, है ना, तो उसको मानता ही नहीं है और सर्वथा शुद्ध मानता है। ऐसे मानने वाले अन्य मत भी है, और वहां आत्मा बस त्रिकाल शुद्ध है, सर्वथा शुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा है। हमें लगता है हमने भी समयसार में ऐसा ही पढ़ा है और ये लोग भी ऐसा ही कहते हैं, ये तो सब धर्मों में तो यही कथन है, तो हमें वो सच लगता है। परंतु वो क्या भूल जाते हैं? पर्याय में अशुद्धता है, उसका स्वीकार नहीं करते, उसको मानते ही नहीं। अरे आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, पर्याय में विकार नहीं है, शुद्ध है, तो अभी मोक्ष का उपाय क्यों कर रहे हैं, स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा क्यों कर रहे हैं, शुद्ध ही है ना। तो कहते पर्याय का विकार मानते ही नहीं है। और कोई दूसरा, एक एकांतवादी, दूसरे ओर वाला, एकांत ने एक ही पक्ष को लेकर सर्वथा मानता है, अन्य कोई आत्मा का स्वरूप सर्वथा आनंद मात्र मानते हैं, वर्तमान अवस्था में दुख होने पर भी, वर्तमान में काहे का दुख है उसको, हाँ रागादि प्रकट ये दुख देन, हमने देखा था ना, मिथ्यात्व और राग द्वेष का दुख उसको पर्याय में है, मैं तो आनंद स्वरूप आनंद मात्र हूं, ये निश्चयाभासी ऐसे मानता है। पर्याय में जो कुछ उसको मानता ही नहीं, ये जो कोई अन्य मति जो है सर्वथा कुटस्थ मानते हैं आत्मा को, पर्याय में जो राग द्वेष और दुख है उसका स्वीकार ही नहीं करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते। यह सूत्र सिद्ध करता है कि, कौन सा सूत्र, जो हमने पहला सूत्र देखा, पांच भाव देखे ना, चार भाव तो पर्याय वाले भाव है और एक पारिणामिक भाव है, तो इस सूत्र से क्या सिद्ध होता है? उनकी वे मान्यताएं और उन जैसी दूसरी मान्यताएं ठीक नहीं है। दूसरी कौन सी? एकांतवादी कोई है तो वो सर्वथा क्षणिक ही मानते हैं, द्रव्य ही क्षणिक है कहते, द्रव्य ही हर समय नया नया होता है कहते। ये भाव करने वाला और कोई किसी ने अपराध किया वो दूसरा था, और अभी जिसको सजा मिल गई वो दूसरा है, ये सर्वथा क्षणिक ही मानते, ये सारे एकांतवादी है, दूषित मतवाद वाले हैं। यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध ही हो तो संसार, बंध, मोक्ष और मोक्ष का उपाय इत्यादि सब मिथ्या हो जाएंगे। मिथ्या हो जाएंगे ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है तो वहां ना बंध है, ना संसार है, ना मोक्ष है, ना मोक्ष का उपाय है, कोई बात ही नहीं रहेगी वहां। आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप और वर्तमान अवस्था का स्वरूप क्या कहते हैं? आत्मा जो कोई भी द्रव्य है, या आत्मा की बात हम करेंगे, एक तो उसका त्रैकालिक स्वरूप है और साथ साथ उसका वर्तमान पर्याय जो है वो वेरिएबल है। त्रैकालिक स्वरूप जो एक समान एक सदृश रहने वाला वो द्रव्य भाव जो है, और उसके साथ वर्तमान पर्याय जो क्षणिक है और वो बदलती रहती है, ये सब मिलकर द्रव्य। तो क्या कहते हैं? आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप और वर्तमान अवस्था का स्वरूप, अर्थात द्रव्य और पर्याय से आत्मा का स्वरूप, द्रव्य से कैसा है और पर्याय रूप से कैसा है, ऐसे दोनों मिलकर, जैसे हम कहते हैं ना, कोई बच्चा हमने 5 साल पहले उसे देखा था और बाद में वो बड़ा हो गया, हमने उसको 5 साल के बाद देखा तो 10 साल का बच्चा हो गया, अरे मैंने तो पहचाना ही नहीं, तू इतना बड़ा हो गया, अरे पहचाना नहीं तो उसे उसी नाम से कैसे पुकारा, जो रमेश सुरेश जो कुछ हो, तो उसमें इतना बदल होकर भी कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कायम रहा है उसमें, है ना। तो द्रव्य कायम रहते हुए भी उसका जो कायम रहने वाला कोई अंश वहां सदैव विद्यमान है, और फिर भी उसमें वेरिएबल कुछ अंश चल रहा है और वो सब मिलकर द्रव्य है। कैसा होता है? सो यथार्थतया ये पांच भाव बतलाते हैं। यदि इन पांच भावों में से एक भी भाव का अस्तित्व स्वीकार न किया जाए तो आत्मा के शुद्ध अशुद्ध स्वरूप का सत्य कथन नहीं होता। क्या कहते हैं? ये स्वभाव से तो शुद्ध कहा है, परंतु पर्याय में पर्याय शुद्ध भी हो सकती है, अशुद्ध भी हो सकती है। जैसे हमने देखा औदयिक भाव की जो अशुद्धता चल रही थी और वो मिटकर जब क्षायिक भाव हो जाएगा हम मानते हैं तो शुद्ध हो जाएगी ना, पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी। तो पर्याय में शुद्धता अशुद्धता चेंजिंग होती है और द्रव्य तो जो नित्य अंश जो है वो कायम जैसा का वैसा है। तो इसको पूरा सर्वांगीण जिसको कहते हैं, पूरा ही द्रव्य कैसा है, इसका अगर हम ज्ञान नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान खोटा होगा और ऐसे खोटे ज्ञान के साथ आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमने भ्रम से कुछ अन्य ही मान लिया है। तो कहते हैं यदि पांच भावों में से एक भी भाव का अस्तित्व स्वीकार न किया जाए, यहां तो भावों की में बातें कही, हम शाम को देख रहे तत्वों की बातें कर रहे हैं, उसमें भी कोई एक तत्व मानेंगे ही नहीं, पूरा वो है ही नहीं कहेंगे, आश्रय बंद समय कुछ होता ही नहीं, बस जीव तत्व अजीव तत्व दो ही तत्व है इस विश्व में, तो भी हमारा वो ज्ञान खोटा हो जाएगा। तो यहां तो भावों की भाषा में बात कर रहे, तो एक भी भाव का अस्तित्व स्वीकार न किया जाए तो आत्मा के शुद्ध अशुद्ध स्वरूप का कथन सत्य कथन नहीं होता और उससे ज्ञान में दोष आता है। जब तक ज्ञान अपने को कुछ जैसा है उससे कुछ कम मानता है, जैसे पर्याय है ही नहीं बस द्रव्य ही है, कुछ अधिक मानता है यानी वो जो शरीर है वो और मैं मिलकर मैं हूं, या विपरीत मानता है जैसा नहीं है उससे ऐसा मानता है, तो ज्ञान झूठा हो जाएगा, ज्ञान खोटा हो जाएगा। तो यह सूत्र ज्ञान का दोष दूर करके, इसका अर्थ है सही ज्ञान करके। अभी कल हमने पढ़ा था छढ़ाला में कि ऐसी ही प्रतीति युक्त जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। तो अभी जो हम सच पांचों भावों का सही ज्ञान करते हैं तो ज्ञान का दोष दूर होता है, नहीं जो हमने कोई मिथ्या मान लिया था जान लिया था वो ज्ञान में से वो सही जानना ही ज्ञान का दोष दूर करना है। उसके लिए ज्ञान का दोष दूर करना है कुछ विशिष्ट क्रियाएं करना, पूजा विधि करना, तो ये विधान से हमारा दोष ये बात नहीं है। सही जानना ही वो खोटा ज्ञान निकल गया, हमने सही जान लिया। तो ज्ञान का दोष दूर करके आत्मा के त्रैकालिक स्वरूप और निगोध से सिद्ध तक की उसकी समस्त अवस्थाओं को, क्या कहा? त्रैकालिक स्वरूप निगोध का और सिद्धों का अलग अलग होगा ना, नीरेंद्र क्या कहते हैं? त्रैकालिक स्वरूप निगोध से हम निकले और अभी कुछ मनुष्य पर्याय में है और सिद्ध होने वाले हैं, तो हमारा त्रैकालिक स्वरूप कुछ अलग था और सिद्ध में जाने पर कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसको त्रैकालिक कहेंगे ही नहीं, त्रैकालिक तो उसी को कहेंगे तीनों काल वो जैसा का वैसा रहेगा। तो त्रैकालिक स्वरूप और दूसरी निगोध से सिद्ध तक की उसकी समस्त अवस्थाओं को अत्यल्प शब्दों में चमत्कारिक रीति से बतलाता है। कौन? ये सूत्र। कौन सा सूत्र? औपशमिकौ क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वसत् स्वतत्वम् और कैसे आगे औदयिक पारिणामिकौ च। तो ये जो पांच भाव है उसके ये क्या बतलाते हैं कि जो त्रैकालिक स्वरूप जो पारिणामिक भाव है और अनादि से अनंत काल तक के जो पर्याय रूप भाव है उन सब को इस एक सूत्र में बतलाया है। फिर हम निश्चित करें कौन से जीव के कौन से भाव है क्या है वो, तो ये सभी उसमें गर्भित हो गए, चार पर्याय रूप भाव और एक अनादि अनंत त्रैकालिक भाव। उन पांच भावों में 14 गुणस्थान तथा सिद्ध दशा भी आ जाती है। इतने मात्र कहने से देखो सूत्र तो इसकी इतनी विशेषता होती है। सूत्र जब कहते तो सारे, अभी हम एक एक गुणस्थानों पर ये पांच भाव घटित कर सकते हैं। 53 भाव हमने विस्तार से कहे ना, दो औषमिक है, नौक्षायिक है, ऐसे हमने जो 53 भाव विस्तार से देखे हैं, अभी एक एक गुणस्थान पर वो सब भाव घटित कराओ। जैसे हमने परसों यहां दिखाए थे मिथ्या तो गुणस्थान में कोई क्षायिक भाव नहीं, कोई औषमिक नहीं है। क्षायोषमिक भाव कौन से है? दो कुज्ञान हो गए या किसी को तीन हो गए, दो दर्शन हो गए, इस तरह से उसको घटित करना है। और फिर औदयिक भाव कितने होते हैं तो उसको भी घटित किया था। तो इस तरह से प्रत्येक गुणस्थान में घटित करना।
एक प्रश्न आया कि उमा स्वामी ने जब ये लिखा होगा तो ये सब उनके भाव में ये आ गया होगा, मगर उन्होंने तो वो सूत्र बहुत संक्षेप रूप में लिखा, उसके बाद में बहुत आचार्य वगैरह ने,
अनेक आचार्य ने उस पर
इंटरप्रिटेशन किया होगा, पर हम जो पढ़ रहे हैं ये रामजी भाई और गुरुदेव के समिति में
रामजी भाई ने ये जो कहा है ना, वो तो सभी उन्होंने ग्रंथों के उदाहरण दिए, अपनी ओर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है।
तो क्वेश्चन यही कि रामजी भाई के ये टीका के पहले भी दूसरी टीकाएं उपलब्ध है क्या?
हाँ है ना, है। तत्वार सूत्रों के ऊपर कितनी टीकाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीकाएं तो तत्वार सूत्र के ऊपर है। ये सर्वार सिद्धि नाम का ग्रंथ है, राजवार्तिक है, तत्ववार्तिक, ये श्लोकवार्तिक है, और फिर ये अर्थ प्रकाशिका है जो पंडित सदा सुखदास जी ने लिखी है उसके ऊपर, तत्वार सार है जो अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, कितनी तो टीकाएं हैं। तत्वार सार,
वो पूज्य
पाठ की है, हाँ अकलंक की है राजवार्तिक, और तत्वार श्लोक वार्तिक भी है,
और उसमें वैसी दूसरी बहुत सारी मिस टीकाएं भी है, मतलब के ठीक से समझ कर नहीं करी हुई ऐसी भी।
नहीं नहीं, उसकी बात हम क्यों करें।
हाँ, मतलब कि वो हाँ के ये रामजी भाई ने
अनेक टीकाओं से ये उदाहरण लिए, राजवार्तिक से तत्व। अभी जो हमने जो जीव का कर्तव्य देखा था उसमें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी उद्धरण दिया है, पंचाशिकाएं जयसेनाचार्य की भी यहाँ एक श्लोक अभी उद्धृत किया था उन्होंने, तो उन्होंने कितना ग्रंथों का अभ्यास करके उसको सार रूप से यहाँ दिया है रामजी भाई ने, ये बहुत गजब की टीका है।
क्योंकि हम श्वेतांबर में भी हैं वगैरह, अभी उससे अलग और ये एकदम,
ये तो और भी वो गंधहस्ती महाभाष्य नाम की बहुत बड़ी टीका थी जो समुद्रभद्र आचार्य ने लिखी हुई थी, उसका वो अवेलेबल नहीं है, उसका केवल ये मंगलाचरण पर की जो टीका जो है देवागम स्तोत्र रूप से अवेलेबल है, वो भी गजब का है स्तोत्र। उसमें तो कितने पांच अभाव, ये चार अभाव वगैरह की बातें उसमें आती है बहुत सारी, पूरा उसमें न्याय शास्त्र भर दिया है उन्होंने देवागम स्तोत्र में। हाँ। बहुत है, हमें पता नहीं ना, कि अभी तो हम वेद सीखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो हमें और ग्रंथों की भी माहिती होती है, हम पढ़ने में आते हैं, और जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण अनेक अपेक्षाओं से हम उसको देखते रहते हैं तो हमारे ज्ञान में निर्मलता आती जाती है। तत्व संबंधी हमारा निर्णय, हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, उसमें क्लैरिटी आती जाती है, और जब पूर्ण रूप से क्लैरिटी आएगी तो ज्ञान सम्यक हो जाएगा, अपना आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, सम्यक निर्णय हो जाएगा। ये बहुत महत्व की बात है, ये पूरा ही हमने 14 गुणस्थानों पर घटित किए थे। ये देवलाली में एक शिविर हुआ था तो ऐसे ही विकल्प आया, और पांच भाव पर लिया था। ये आपके यहाँ सीडी है, एक सीडी है ना, उसमें इसमें मैंने सिखाया, अब तक उसका कुछ नहीं आया है, उसके आगे वाला सारा विषय आया है।
मतलब जो आपकी
पांच भाव की एक ही सीडी है, जो देवलाली में कुछ 7-8 दिन मेरे प्रवचन हुए थे उसमें पूरे बोर्ड पर एक एक गुणस्थान में पांचों भाव लगाए थे।
क्या नहीं आया
अभी तक? मैंने लिया है ना। हाँ। ये उसमें कुछ नहीं है।
अच्छा।
उसमें तो और ही कुछ है। अब आप उसको अभी सुनेंगे तो ये बहुत, अभी आपको और ज्यादा उसमें रुचि आएगी। हाँ, ये तो ये हमने
इसकी,
हाँ, कभी कभी क्या है, अभी मैंने बोला ना कि ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, ये हम कोष्टक या टेबल्स बनाते हैं तो वो आइन मौके पर जो सोचते हैं या ऐसा लगता है कि इसमें से ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, लोगों को समझेगा।
हाँ, कैसे सोता है, किसको कितना आता
है, हाँ जहाँ कुछ अभ्यास है थोड़ा करना नियोग का, तो ऐसा सहज लगता है कि थोड़ी इसकी सूक्ष्मता और बताएं। हमें विकल्प है ना कि अपे कुछ मालूम है, कुछ सूझता है और सामने वाला वो पकड़ सकता है, तो उसको और कुछ बता दो। आप अभी वो सुनेगी ना तो उसमें आपको मजा आएगा है। पांच भाव के यानी वो जो 53 भाव है वो कहाँ कितने घटित होते हैं वो सब उसमें चर्चा की है। और ऐसा कुछ बोरिंग नहीं लगता है फिर अभी आपका
तो
आपका अभी वो गुणस्थान भी हो रहा है ना, अभी गुणस्थान की भी आपकी यहाँ अभ्यास हो रही है और उसके साथ अभी वो भाव समझ में आएंगे कौन से होते हैं। जैसे वो हमने अभी देखा ना उदयिक भाव, औदयिक भाव देखे तो उसमें हमने कौन कौन से देखे, जैसे गति औदयिक भाव है, फिर कषाय है, लेशा वगैरह 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 देखे सब। तो दूसरे गुणस्थान में उसमें से मिथ्यात्व वाला औदयिक भाव नहीं होगा, असंयम वाला होगा कि नहीं होगा, असंयम वाला उदयिक भाव तो चौथे गुणस्थान तक है, अज्ञान वाला पहले दूसरे तीसरे तक होगा, असिद्धता वाला चौदहवें तक होगा। इस तरह से हम घटित करेंगे उस पर थिंकिंग करेंगे। हाँ जैसे भी पहले गुणस्थान में उदयिक गति औदयिक भाव चारों ही गति वाले हो गए पहले गुणस्थान में, तो हम ये हम चौथे गुणस्थान में भी चारों गति वाले हो गए, पांचवें गुणस्थान वाले में कितने औदयिक गति औदयिक भाव हो गए बोलो, पांचवें गुणस्थान में हाँ दो गति है ना। तो इस तरह से हम डिराइव करेंगे, ये कुछ बहुत कठिन बात नहीं है, परंतु फिर हम भी सोचते हैं ना उस एंगल से, यानी हमें उसमें इतने इन्वॉल्व होते, इतने इनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि उपयोग हमारा इधर उधर भटकता ही नहीं है। ये कर्णानियोग की विशेषता है कि बिल्कुल हमारा उपयोग इतना उसमें जिसको एकाग्र हो जाता है, और ये कमाल की बात है क्योंकि हमें यही तो ध्यान है ना, ये और ध्यान की क्या प्रैक्टिस करना, रेस्पिरेशन को देखते रहना उसके लिए, उसके बदले गुणस्थान को देखते रहो। देखो ये मुनिराज भी त्रिलोक की रचना क्यों समझते थे, त्रिलोक का क्यों विचार करते थे, क्या भूगोल का विषय विचार करने से उनके आत्मा की अनुभूति होती थी, क्या होता है, अरे त्रिकाली आत्मा में लीन हो जाओ ना, भूगोल को क्यों जानते हैं। ये सत्य बात को जानते रहना वो भी ध्यान का विषय है ना, ये धर्म ध्यान के सारे विषय होते हैं, संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा है, और वो मुनियों के भी होता है, क्योंकि नहीं तो वो उपयोग भटकेगा अन्यत्र और राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे। अब जब हम त्रिलोक की रचना जान रहे हैं, अब इतनी पृथ्वियां है, इतने वातवलय है, उसमें ये बातें होती, यहां ये जीव रहते, उसमें राग द्वेष होने का कहां सवाल है, हमें तो जाके वहां से कुछ लाना नहीं है ना, ले जाना है ना।
और फिर जितना ऐसा ज्यादा पढ़ते हैं तो कभी कभी भले शरीर घर की कुछ क्रिया काम करते तो भी अपना माइंड
उसी में, ये तत्वों के बारे में हमारे चिंतन चलते रहता है। सत्य स्थिति को जानना ये ज्ञान का विकास है कि कुछ ज्ञान नीचे जा रहा है, क्यों है हा? और ये सहज होता रहता है, याद भी रहते चीजें, कर्मों की बातें जानते, त्रिलोक की बातें जानते, आत्मा को गौण करके नहीं जान रहे हम, उसकी मुख्यता उसके पीछे नहीं लगे, परंतु आत्मा को सही रूप से जानते हैं तो सहज रूप से ऐसे विकल्प आते कि और भी जिज्ञासा होती है ना, और जान लू कहीं। तो ये सारे विषय मुनियों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं तो
दिव्य ध्वनि में आया ही है ना
ये सारा, और कोई नहीं कहता का मैं कह रहा हूँ, दिव्य ध्वनि में तो चारों अनियोग और कितने विस्तार से आया, और मुनियों ने भी कितने विस्तार से लिखा है, तो उनको नहीं पता था जो हमें पता है कि आत्मा में लीन रहना चाहिए। देखो ये हमारी भ्रमणा ऐसी चलती है। अभी दो ही मिनट रह गए हैं, देखो ये शब्द हम चमत्कार रीति से बतलाता है, ये पढ़ा हमने, उन पांच भाव में 14 गुणस्थान तथा सिद्ध दशा भी आ जाती है। अभी आगे का पैराग्राफ हम दोपहर में देखेंगे, अभी कोई प्रश्न नहीं, ये दो ही मिनट है अभी, क्योंकि पांच भावों की चर्चा जितने हम विस्तार से कोई भी विषय सूक्ष्मता से सीखते हैं तो उसकी जो बारीकियां है, उसकी जो सूक्ष्मता है वो ख्याल में आती है। पहले तो पांच भाव क्या होता है, हम भी को जब भी हमने पहले सुना ये पांच भाव क्या होता है, मुझे याद है हम ये नेमी क्या अपने निमचंद जी ना, रखियाल वाले, जिन उनसे हमने सिद्धांत प्रवेश का सीखी, तो उनको लेके हम शिखर जी यात्रा के लिए गए थे। वहां एक शिविर हुआ था, तो हमने उनसे विनती की थी हमारे साथ आप चलिए। तो जाते समय मुझे याद है पांच भाव उन्होंने पहले बार हमको सिखाए थे कि ये औष्णिक क्या होता है, क्षायिक क्या होता है, ट्रेन में। और पूरे जाते जाते हमारे यही इसी भाव पर चर्चा चली थी। 36 घंटों में जो कुछ सोए हो गए, बाकी इसी की चर्चा चली। अभी हम यही रुकेंगे, दोपहर में आगे चलाएंगे अपना विषय।
और ये गति कर्मों के प्रकार, और जो लास्ट ईयर भी अपन ने पंचलब्धि के उसमें भी जो किया था ना, कि जो शुभ अशुभ
शुभ
अशुभ प्रकृतियां हैं, तो उससे भी वो क्लियर होती है, तो भी इससे वो भाव समझ
बहुत बहुत ज्यादा हो गया। सभी विषय एक दूसरे को पूरक होते हैं। अभी हम रुकते हैं यहाँ पर। लो 2400 भगवान की जय।